श्री राधा कृष्ण पादा जय श्री कृष्ण नित्यानंद श्री हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे साधु साधु तदा मिथिली पूजिता तो इस अध्याय के दूसरे विभाग के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। अभी तीसरा विभाग है। कौन सा विभाग है तीसरा? स्वधर्म का पालन हमेशा सुख लेकर आता है। तो आप देखिए पहले श्लोक 31वां श्लोक स्वधर्म से ही शुरू होता है। तो यहां पर स्वधर्म के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो श्लोक क्रमांक 31। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्य युद्ध श्रेयण्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। तो स्वधर्मम् अपि चावेक्ष, कंसिडरिंग योर स्पेसिफिक ड्यूटी एज अ क्षत्रिय, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए, तो न विकम्पितुमर्हसि वो अंत में अनुवाद करते हैं प्रभुपाद, संकोच करने का कोई आवश्यकता नहीं है। उससे पहले धर्मादि युद्ध श्रेयोन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो स्वधर्म का क्या अर्थ होता है? इसका दो अर्थ होते हैं। तो एक है जब तक हम लोग आबद्ध अवस्था में रहते हैं हमारा स्वधर्म अलग होता है, तो जब मुक्त हो जाते हैं तो हमारा स्वधर्म होता है भगवान श्री कृष्ण के सेवा करना, अपने ही स्थिति में रहकर, अपने मूल स्वरूप में रहकर भगवान कृष्ण के सेवा में लगना। दो प्रकार के स्वधर्म होते हैं। तो जब तक हम लोग बद्ध अवस्था में रहते हैं हमारा स्वधर्म अपने गुण के अनुसार होता है, किस गुण के प्रभाव में है हम लोग उसके अनुसार हमारा स्वधर्म होता है। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम मतलब उसको गुण के अनुसार उसको विभाजित किया गया है। गुणकर्म विभागशः चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। और तो उसको ही कर्म कहते हैं और उसको ही धर्म कहते हैं, उसको ही ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। प्रभुपाद धर्म को क्या किया उन्होंने अंग्रेजी में उसका अनुवाद करते हैं, धर्म का अर्थ बोलते हैं ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, वही कर्म होता है हमारा, कर्म क्या प्रोफेशन होगा हमारा, तो वही धर्म है। तो ये भारतीय संस्कृति या वैदिक संस्कृति है, कर्म ही धर्म बन जाता है वहाँ। तो कर्म ही क्या हो जाता है, धर्म बन जाता है। ऐसे कोई संस्कृति है क्या जहाँ पर कर्म धर्म हो जाता है? तो ये वैदिक सभ्यता है, संस्कृति है, तो इसको ही वर्णाश्रम कहते हैं। तो और हमारा मूल जो धर्म स्वधर्म होता है आध्यात्मिक स्तर पर, उसको हम लोग स्वरूप कहते हैं ना, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, विशेष करके उनके जो मूल, जो हमारा स्थाई भाव कहते हैं उसको, हमारा मूल स्वरूप, मतलब आध्यात्मिक जगत में हमारा स्वरूप, उसके अनुसार हमें सेवा करते हैं हम लोग। वो उसको वो असली स्वधर्म है वास्तव में, लेकिन हम लोग अभी गुणों के प्रभाव में होने के कारण, गुणों के प्रभाव में होने के कारण यहाँ पर स्वधर्म अलग बन जाता है। तो भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया, यहाँ पर गुणों के अंदर होते हुए भी इस स्वधर्म को पालन करेंगे तो धीरे धीरे गुणों से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा सिस्टम व्यवस्था भगवान ने बताया, और उसके साथ साथ हम लोग साधन भक्ति को भी करते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद, जब तक हम मुक्त अवस्था में रहते हैं, सो ये भौतिक जगत के जो धर्म है उसको पालन करना पड़ता है, वर्णाश्रम धर्म को पालन करना पड़ता है। तो आप देखिए, जब तक हम लोग मुक्त अवस्था में रहते हैं तब तक इसको पालन करना ही पड़ता है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, गुणों के प्रभाव से मुक्त होना मुश्किल हो जाएगा। तो भक्ति के साथ क्या संबंध है? 11वें स्कंद में भगवान बताते हैं, या भगवान बताते हैं, तो वहां पर वर्णन आता है कि हम लोग वर्णाश्रम धर्म को पालन करेंगे, लेकिन भगवान का भक्ति नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है, वो कर्म मीमांसक या जो स्मार्थ होते हैं, स्मार्थ स्मार्थ ब्राह्मण भी वो क्या करते हैं, वैदिक धर्म को अच्छी तरह से पालन करते हैं, लेकिन वो क्या है, वो भगवान का भक्ति नहीं करते, वो भी कर्म मीमांसक, उनका भी दर्शन भी वो कर्म मीमांसक के अनुयायी होते हैं वो लोग भी, तो ब्राह्मण वर्ग। तो भगवान का भक्ति भी करना चाहिए, उसके साथ साथ ये धर्म को स्वधर्म, ये वर्णाश्रम धर्म को भी पालन करना चाहिए, तो तब जाके हम लोग क्या हो जाते हैं, तो मुक्त हो जाते हैं। तो जब तक इस जगत में है, कभी कभी मुक्त जीव भी इस जगत में जब रहते हैं तो वो वर्णाश्रम धर्म का, दूसरों को उदाहरण स्थापित करने के लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, स्वयं भगवान भी पालन करते हैं उसको, है ना। आपने देखा होगा द्वारका में उनकी लीलाओं का, ग्रस्त को कैसे क्या क्या करना चाहिए सब कुछ उन्होंने किया, ये गृहस्थ क्षत्रियो को क्या क्या करना चाहिए तो वो सब कुछ उन्होंने किया। तो ऐसे हम लोग देखते हैं आरंभ से भी, जब कंस का हत्या किया भगवान ने, तुरंत ही वसुदेव ने क्या किया, उनको दीक्षा संस्कार वगैरह करा दिया, तो है ना, तो ब्रह्मचर्य का वो पालन किए, गुरुकुल में गए, प्रशिक्षण लिए, तो सभी वर्णाश्रम धर्म को पालन कर रहे भगवान भी। तो ऐसे सो जब तक हम लोग, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसा बहुत प्रचलित है हमारे आंदोलन में भी। हम वैष्णव हैं, ये सब करने का जरूरत नहीं है, वैश्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का जरूरत नहीं है, ऐसे वो लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद, जब तक एक व्यक्ति मुक्त नहीं होता है तब तक उसको पालन करना ही पड़ेगा, ऐसे प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं। तो और ब्रह्मचारी के लिए क्या है वर्णाश्रम धर्म का महत्व? तो ब्रह्मचारी के लिए उनका साधना भक्ति और उनका श्रवण कीर्तन वो तीव्र नहीं है, तो क्या हो जाता है, वो गुणों के अनुसार उनको धर्म को पालन करना पड़ेगा, तो उसके अनुसार वो क्या बन जाएंगे, गृहस्थ बन जाएंगे। और गृहस्थ में भी अलग अलग उनका ऑक्यूपेशन होगा, उनके गुण के अनुसार होगा, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, कोई भी हो सकते हैं। तो इसलिए ब्रह्मचारी को अपना साधना भक्ति क्या करना चाहिए, बहुत ही तीव्र श्रवण कीर्तन वो तीव्र रहना चाहिए। तो उससे क्या हो जाता है, जो गुणों का प्रभाव है वो कम हो जाता है, या उसको हमारा मेटेरियल प्रोपेंसिटी, भौतिक प्रवृत्ति जो होता है उसको वो दबाता है, और धीरे धीरे उससे हमें शुद्ध कर देता है। थोड़ा समय लगता है शुद्ध होने के लिए, कम से कम वो दबा के तो रखता है। तो आप जिस दिन अच्छा साधना नहीं करेंगे उस दिन आप देखिए बहुत सारे काम वासनाएं आ जाएंगे, है ना, भौतिक वासनाएं आ जाएंगे। तो ये ऐसे काम करता है। तो ऐसे ही हमारा साधना अच्छी तरह से बना के रखना चाहिए। लेकिन फिर भी साधना अच्छा है तो भी ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, अपने गुणों के अनुसार ही हम लोग कार्य करते हैं इस जगत में। तो क्योंकि ये जो शरीर है, बाह्य शरीर जो प्रारब्ध कर्म से प्राप्त हुआ है, कुछ गुण के प्रभाव में है, कुछ स्वभाव है उसका, तो उसको बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी गुरु के मार्गदर्शन में हम लोग अच्छी तरह से भक्ति साधना भक्ति करेंगे तो उसको बदल सकते हैं। तो स्थूल शरीर को बदलना मुश्किल है ना, है क्या? लेकिन फिर भी प्रभुपाद कहते हैं भूमिका में कि हम लोग मन से कार्य करते हैं, मन से। तो मन को, सूक्ष्म शरीर को हम लोग बदलेंगे तो स्थूल शरीर उसके अनुसार कार्य करेगा। तो इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए वो श्रवण करना, श्रवण कीर्तन और साधना भक्ति अच्छी तरह से होना चाहिए। तो ये स्वधर्म है। अभी अर्जुन के लिए क्या स्वधर्म है? एक तो चीज है वो भक्ति करते हैं, भगवान के भक्त है, दूसरे उसके साथ साथ उनका क्षत्रिय धर्म, उनका स्वभाव क्या, स्वधर्म है क्या है, क्षत्रिय। सो धर्मादि युद्धस्योन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। सो क्षत्रिय होने के कारण, क्षत्रिय होने के नाते आपको इस धर्म युद्ध करने से, धर्म को स्थापना करने के लिए, धर्म के लिए युद्ध करने से और कोई श्रेय नहीं है, श्रेय कार्य नहीं है, इससे भी बढ़कर और कोई कार्य नहीं है। धर्माद्धि युद्ध श्रेयोन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रियों के लिए धर्म के कारण युद्ध करने से और कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। तो क्यों ऐसे होता है क्षत्रियों के लिए? क्षत्रिय शब्द का अर्थ ही यही होता है, जो दूसरों को हिंसा से मुक्त करते हैं, उनको रक्षा करते हैं। तो क्षत मतलब हिंसा, और त्रायते मतलब जो मुक्त करते हैं या रक्षा करते हैं उनका क्षत्रिय। तो क्षत्रियों के लिए प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य बोल रहे हैं, उसके लिए क्या करना, क्या प्रशिक्षण होना चाहिए उनके लिए, जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रशिक्षण होना चाहिए, उनको प्रशिक्षण शास्त्रों में अध्ययन का प्रशिक्षण होना चाहिए। तो वो प्रमुख चीज है और नम्रता वगैरह। तो है ना, आचरण दासवान नीचो, तो इंद्रियों के निग्रह वगैरह। तो लेकिन प्रमुखता स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन, तो वो प्रमुख है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्षत्रियों के लिए उनको लिए क्या प्रशिक्षण होना चाहिए, उनको कैसे हथियारों को उपयोग करना चाहिए उसका प्रशिक्षण होता है। वो लोग जंगल में जाकर वो शिकार करते हैं, शिकार के लिए जाते हैं। सभी क्षत्रिय राजा आप जानते होंगे ना, आप पढ़ेंगे तो इतिहास में महाभारत पुराण वगैरह, तो सभी क्षत्रिय राजा क्या करते थे, वो ये प्रक्षिश वो शिकार के लिए जाते थे। वो शिकार करके तो उनको ऐसे प्रशिक्षण, ये शिकार करने से ऐसे प्रशिक्षण मिल जाता था हथियारों को उपयोग कर। तो हथियारों को उपयोग करके वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को मतलब प्रजा को रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वो उदाहरण दे रहे हैं, अभी भी आज तक जो जयपुर के राजा हैं ये ऐसे चलता है। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े ऐसे क्या बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली क्रूर पशुओं का चुनौती देते हैं वो। अकेले या सामने सामने भी है वो। कभी ऐसा भी हुआ है ना, कौन है वो, ऐसे हाथ से वो शेर को मारा है वो, ऐसा भी राजा हुए हैं, भरत महाराज। भरत महाराज तो शेर को ऐसे ही खेलते थे, वो ऐसे खेलते थे उनके साथ शेर और से। तो ऐसे वो आजकल के नेता क्या करते हैं, आजकल का नया क्या प्रशिक्षण होता है उनका, चिकन और मटन के साथ कहते हैं या क्योंकि यहाँ पर जयपुर में जब गए थे उस समय वो जयपुर के राजा प्रभुपाद जी को ये सब दिखा रहे थे, मैंने इतना शेर को मारा, वो सब वहाँ पर उनका प्रदर्शन लगा था। तो और उसको रॉयल क्रिमेटोरियम, जैसे एक अन्य राजा को मृत्यु होने के बाद उसका जो भी अंत्य संस्कार करते हैं वैसे ही इस शेर को भी अंत्य संस्कार किया जाता है। तो ये ऐसे होता है प्रशिक्षण। तो यहाँ पर रिलीजियस लॉ बुक्स, धर्म शास्त्र से प्रॉपर उल्लेख कर रहे हैं संहिताओं में, यहाँ पर धार्मिक ग्रंथों में कहा गया। ग्रंथों में मतलब क्यों ये बुक्स, क्योंकि ये दोनों श्लोक अलग अलग है, एक मनुसंहिता से है एक महाभारत से है। आहवेशु मितोन्यन्यम जिगांसतो महीक्षितः युद्धमानाय परम शक्त्या स्वर्गम यान्ति अपरान मुखः यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततम् द्विजः। संस्कृता किल मंत्रश्च तेपि स्वर्गम अवाप्नुयन्। तो आहवेशु मितोन्योन्यम, युद्ध भूमि में जब क्षत्रिय राजा दूसरे जो ईर्ष्यालु राजा होते हैं उनके साथ युद्ध करते हुए मृत्यु हो गया तो वो क्या करते हैं, वो स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। जैसे ब्राह्मण, वो दूसरा भाग है, यज्ञेषु पशवो ब्राह्मण हन्यन्ते सततम् द्विजे। तो जब द्विज है, मतलब जो ब्राह्मण होते हैं वो लोग पशु को आहुति देते हैं यज्ञ में, तो वो भी स्वर्ग प्राप्त करते हैं। वैसे ये क्षत्रिय भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मण भी हिंसा कर रहे हैं और क्षत्रिय भी हिंसा कर रहे हैं। जैसे ब्राह्मण हिंसा करते हैं, वो भी क्षत्रिय कैसे करते हैं, युद्ध करते, युद्ध करके हिंसा करते हैं। तो ब्राह्मण यज्ञ में वो आहुति देकर उनका हत्या कर, वैसे ही दोनों को स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये श्लोकों को इसलिए प्रभुपाद उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि वो श्रेयोन्यात भगवान वो शब्द कहता है ना। तो आपको युद्ध धर्म के कारण युद्ध करने के, धर्म के लिए युद्ध करने का अन्य करने से, करने के बजाय अन्य कोई श्रेय कार्य नहीं है आपके लिए क्षत्रिय होने के नाते। तो इसलिए ये श्रेय को प्राप्त कर लेगा। तो पिछले अध्याय में उन्होंने क्या किया था, तो न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो वास्तव में जो श्रेय के बारे में अर्जुन चर्चा कर रहे थे, हम लोगों को तात्पर्य में हमें श्रेय क्या मिलता, श्रेय का अर्थ क्या मिलता है, भगवान विष्णु का भक्ति। प्रभुपाद वो श्लोक उल्लेख करते हैं ना वहां पर कि नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, वो श्लोक उल्लेख करते हैं। तो लेकिन अभी इनके लिए श्रेय क्या है, वर्णाश्रम धर्म में श्रेय क्या है, ऊंचा शरीर को प्राप्त करना, तो ऊंचे लोगों को प्राप्त होना, वो श्रेय है क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मणों के, वर्णाश्रम धर्म में। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं इसके बजाय आपके लिए क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करने के बजाय अन्य कोई श्रेय चीज नहीं है। तो आप ऐसा मत जी सोचिए कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवाय न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो वो उससे भी पहले के श्लोक से भी संबंधित है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, विपरीत होगा इस युद्ध में, कोई श्रेय प्राप्त नहीं होगा। नहीं, तो भगवान बोल रहे स्वधर्म को पालन करने से आपको श्रेय प्राप्त होगा, आपको ऊंचा लोक का गति मिल जाएगा। ऐसे भगवान इस अध्याय के आरंभ में भी उन्होंने वही चीज अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया। अकीर्तिम करम क्या बोलते हैं, कुतस्त्व कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अस्वर्ग्यम अस्वर्ग स्वर्ग को प्राप्त नहीं करेगा, ऐसे ऐसे आपका बर्ताव जो है। तो ऐसे भगवान अर्जुन को कह रहे थे, तो वही श्रेय लेकर आएगा। यहाँ पर प्रभुपाद हिंसा के बारे में बोल रहे हैं। ऐसे बाहरी तौर से हम लोग देख सकते हैं कि वर्णाश्रम धर्म में ये सब हिंसा चल रहा है। तो पशुओं का हत्या होता है यज्ञ में, या क्षत्रिय लोग भी शिकार भी करते हैं और मनुष्यों का भी वो लोग युद्ध करके भी हिंसा करते हैं। ऐसा लगता है कि बाहरी तौर से हिंसा हो रहा है, लेकिन हिंसा का जरूरत होता है, जैसे हम लोगों ने कल चर्चा किया, और वो हम लोग जिहाद के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसी आवश्यकता फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता क्योंकि तब उसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छे से नहीं। तो कौन हमें, अंत में हमें भगवान का आदेश चाहिए, भगवान का आदेश चाहिए, आदेश के बिना युद्ध नहीं कर सकते। भगवान के आदेश के बिना युद्ध नहीं कर सकते। और जो जिहाद के लोग हैं वो वास्तव में वो जो कुरान को भी वो पालन नहीं करते, कुरान में भी अहिंसा के बारे में चर्चा है। एक तरफ होगा धर्म को जो स्वीकार नहीं करते उनका हत्या होना चाहिए, ऐसे बताया होगा। लेकिन दूसरी तरफ वो भी बताता ना हिंसा नहीं करना चाहिए करके, तो उसको कौन सा हमें स्वीकार करना चाहिए, कौन उसको निर्णय करेगा, है कि नहीं? तो इसलिए अपने मनगढ़ंत ढंग से कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो ये सब फैनेटिकल। तो जब आगे के अध्याय में जब कोई धर्म का पालन, धार्मिक नियम को हम लोग पालन कर रहे हैं, वो दर्शन दर्शन के आधार पर नहीं है, वो क्या है, कठोर कठोर कट्टरतावाद है। तो ये इस्लाम के कट्टरतावाद है, ये जिहाद का अर्थ। सो रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज मेंटल सेंटिमेंटलिज्म आर समटाइम्स फैनेटिसिज्म, ऐसे बोलते। सो फैनेटिसिज्म ये कट्टरवाद है ये। तो हम लोग भावुक हो जाएंगे नहीं तो कट्टरवादी हो जाएंगे, और का भावुकता ही कट्टरवाद का क्या होता है, स्रोत है वो। तो इसलिए धर्म के आधार, दर्शन शास्त्र के दर्शन के आधार पर होना चाहिए सब कुछ। कौन इसको निर्णय करेंगे, ये करना चाहिए, युद्ध में लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, भगवान का अनुमति होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अर्जुन को क्या है, भगवान का अनुमति है, ऐसे कहते हैं। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं, अगला श्लोक लेंगे। यदृशयाचोपपन्नम स्वर्गद्वारमकावृतम सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वारा द्वार खुल जाते हैं। तो हम लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि यदृशया चोपकन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। क्षत्रिय लोग जब भी उनको सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। सुखिनः क्षत्रिय पार्थ, वो क्षत्रिय बहुत ही सुखी होते हैं, उनको आनंद मिलता है। जैसे हम लोग बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जब उनको मृत्यु आ जाता है मृत्यु के, तो वो बहुत सुखी है, आनंद महसूस करते हैं वो लोग। अभी हम लोग निर्वाण को प्राप्त करेंगे करते हैं, लेकिन सिर्फ वो ब्रह्म है निर्वाण वो जो सोच रहे हैं। तो लेकिन ऐसे ही एक क्षत्रिय जो है वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं जब भी युद्ध का अवसर प्राप्त हो जाता है उनको, वो लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अभी युद्ध आने का, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बोलते हैं वो। तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, और क्योंकि उनका स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते हैं किसके ओर से लड़ रहे हैं वो, अभी पांडव और कौरव के बीच में युद्ध चल रहा है, वो ये भी नहीं सोचते हैं, सिर्फ हमें लड़ना है बस। तो उन ये क्षत्रिय भाव। आजकल क्या होता है, आधा जो सेना का शक्ति जो है, आधा सेना का शक्ति ये तथाकथित जो नेता है, तथाकथित जो राजा है, या उनके सेना का जो कमांडर इन चीफ है, जनरल मेजर जनरल होते हैं ना वो लोग, तो उनका रक्षा करने के लिए या रक्षा मंत्री का रक्षा करने के लिए आधा सेना चला जाता है। तो लेकिन पहले जमाने में क्षत्रिय ऐसे होते थे वो लोग। तो वो युद्ध करने के लिए पहले सामने होते थे वो। तो सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्, ऐसे कहते हैं। तो देखिए कैसे कितना अंतर है ना, कितना पतित हो गए लोग। तो राजा लोग, तो यहाँ पर वो यशमती यशमती सेन का उदाहरण देते हैं। तो यशमती सेन नामक एक राजा थे सेना वंश में। तो वो मुसलमानों के साथ युद्ध करने के लिए गए वो, और ऐसा हुआ कि रानी को क्या हो गया, उसका एक्चुअली दो ऐसे अलग अलग कथा है उसके बारे में। ये कैसे होता है कि वो राजा आके मतलब उनको रानी को मतलब पहले से ही समाचार मिल गया, राजा वापिस आ रहे करके, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। तो और ऐसे जब राजा आके दरवाजा खटखटाए तो मैं राजा हूँ वापिस आया हूँ, ऐसे राजा हूँ आप दरवाजा खोलिए, ऐसे जब उन्होंने बताया तो अंदर से उनको आवाज आया कि यशमती सेन कभी युद्ध से वापिस आते नहीं है, वो विजयी बन के आते हैं नहीं तो अपना शरीर त्याग देते हैं युद्ध भूमि में ऐसे। तो उसके दूसरा वो है कि वो मुसलमान राजा, क्योंकि उनके वो रानी से आकर्षित थे, वो यशमती सेन के नाम से आए, उनका वेश सो आए वो, तब उन्होंने खोला नहीं वो, क्योंकि उनको पता था यशमती सेन ऐसे नहीं आएंगे वापस। तो ऐसे क्षत्रिय स्वभाव, रानी भी ऐसे थी वो, रानी को भी पता था कि ये क्षत्रिय भाव होता है, तो वो लोग मरते हैं लेकिन कभी भी डरते नहीं है। हाँ कौन बताया उसको सर खटा सकते हो, कोई गीत है ना वहाँ पे, कौन लिखा उसको? कौन लिखा उसको? जावेद अख्तर ने लिखा। हाँ है या लेकिन स्पिरिट है, क्षत्रिय भाव है ना, तो ऐसे अभी उसमें भी था, बहुत सारे लोग थे उसमें भी, जब युद्ध चल रहा था अभी भी क्षत्रिय थे, जब स्वतंत्र युद्ध चल रहा था तब भी बहुत सारे लोग थे क्षत्रिय। भगत सिंह वो ही इज सिख ना, सिख राइट, वो सिख तो भगत प्रभुपाद जी बोले वो क्षत्रिय है, प्रभुपाद जी को वो मिलने के लिए आए थे ना, कौन कौन तीन लोग मिलने के लिए, चिन्मय स्वानंद स्वामी और एक योगी जन योगी भजन, वो योगी भजन वो सिख था, उनको बताया प्रभुपा जी ने हम ब्राह्मण को बनाएंगे आप क्षत्रियों को बनाइए, ऐसे बताया, सिख लोग क्षत्रिय होते हैं आप वैसे बनाइए है बोला। तो आप देखिए वो अभी भी, वो आप अमृतसर जाएंगे अभी भी वो लोग क्या कहे, वो लेके सब लेके ही घूमते हैं होगा अभी भी। तो क्यों वो सोचते हैं ये हमारा धर्म है, युद्ध करना ही हमारा धर्म है, ऐसे सोचते हो, ऐसे क्षत्रिय हमेशा वो शस्त्र अस्त्र शस्त्र से युक्त होते हैं। तो आगे भी इसके वर्णन आए, यदृश्य अछूत उपनाम। और यहाँ पर परशर स्मृति से उल्लेख कर श्रील प्रभुपाद, क्षत्रियो हि प्रजा रक्षन् शस्त्रपाणि प्रदंडयन् निर्जित्य परसैन्यादि क्षितं धर्मेण पालयत्। तो क्षत्रिय का क्या धर्म होना चाहिए, क्षत्रियो हि प्रजा रक्षन् शस्त्रपाणि प्रदंडयन्, प्रजा को रक्षा करने के लिए शस्त्र अस्त्र शस्त्र से तो अस्त्र शस्त्र को उपयोग करना चाहिए, निर्जित्य परसैन्यादि दूसरे सैन्य को पराजय करके ये क्षितम धर्मे न पालयत, पृथ्वी को धर्म धर्म को पालन करते हुए पृथ्वी के ऊपर राज्य करना चाहिए ऐसे। तो यहाँ पर परशर मुनि कह रहे हैं, तो ये सब धार्मिक नियम है। तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं ना पिछले तात्पर्य को भी, तो पढ़िए दोनों तात्पर्य।
सामाजिक व्यवस्था के चार वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है।
सामाजिक व्यवस्था मतलब वर्णाश्रम धर्म को होना ही चाहिए, वही असली सामाजिक व्यवस्था है, तो सोशल सिस्टम, नहीं तो वो सब क्या है, सब मूर्खता है। सब अभी जो सामाजिक व्यवस्था बनाया लोग, सब मूर्खता है। तो अभी का सामाजिक व्यवस्था किसके आधार पर है? ये तो ये डेमोक्रेसी के आधार पर है। ये तो लोग वोट लेता है, शूद्र लोग, पतित सा पतित लोग वोट लेकर राजा बन जाता है वो, अन्य पतित लोगों से, कुत्ते बिल्लियों से वोट लेकर वो लोग राजा बन जाते हैं। तो इसके कारण क्या हो जाता है, तो समाज में कोई धर्म का पालन नहीं होता है, कोई किसी का रक्षा नहीं होता है, ठीक है?
क्षत्रिय कहलाते हैं। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ, तो क्षति से रक्षा करे वो क्षत्रिय कहलाता है। राय थे रक्षा प्रदान करना, क्षत्रियों को वन में आकर करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण का सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आहोबेशु नितो न्यूनम जीगान संदोमय चितः विद्यमानः परम शक्तः स्वर्ग त्रान्त पराङ्मुखः यज्ञेषु पशुभो ब्राह्मण अन्यन्ते सततं द्विजैः संस्कृता किल मन्त्रैश्च देवी स्वर्गमाप्नुवन्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रियों को मृत्यु के अंततर उससे वही उच्च लोक को प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा यज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप में दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है, जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि में है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म अनिवार्य होता है।
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो जब तक हम लोग मुक्त अवस्था में नहीं रहते वो स्वधर्म को पालन करना अनिवार्य होता है, ऐसे बोलते प्रभुपाद। वो अनिवार्य है, हमें जरूरत नहीं है, वी आर ऑल वैष्णव सोसाइटी, हम लोग वैष्णव हैं, ये सब का जरूरत नहीं है, स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म का जरूरत नहीं है। तो किसी न किसी तरह आजकल वो नया फिलॉसफी आ गया है हमारे आंदोलन में भी, वो लोग क्या कहते हैं, सम और अदर डू एवरीथिंग फॉर कृष्णा। जैसे किसी न किसी तरह सब कुछ क्या करो, कृष्ण को समर्पित करो, सब कुछ कृष्ण के संबंध में करो। कैसे कृष्ण के संबंध में किया जा सकता है, सब कुछ कैसे किया जा सकता है कृष्ण के संबंध में? आप क्रिकेट खेल रहे हो, कैसे कृष्ण के संबंध में किया जा सकता है? वो आजकल नया नया प्रोफेशन आया है ना, तो फुटबॉल खेलते हो, कृष्ण के संबंध में कैसे खेलोगे उसको? या बड़ा बड़ा पूरा ये दुनिया क्या है, वो अभी बहुत बड़े बड़े स्लॉटर हाउस बना रहा है, मेंटेन कर रहा है, तो वो कैसे कृष्ण के संबंध में करेंगे? समू आर अदर डू इन कनेक्शन विद कृष्ण, ये नया दर्शन है अभी हमारे आंदोलन। तो ऐसा नहीं होता, जो शास्त्र में दिए गए हैं कर्म और धर्म जो दिया गया शास्त्र में हमारे गुण के अनुसार, तो उसको करने कृष्ण के संबंध में कर सकते हैं उसको। आप शास्त्र जैसे ब्राह्मण होते हैं, वो ये स्वाभाविक है, जो ब्राह्मण होते हैं वो भगवान के बारे में जो शास्त्र है उनको अध्ययन करेंगे, उनको सबको सिखाएंगे, और क्षत्रिय जो होते हैं वो भगवान के लिए व्यवस्थापना करेंगे, है कि नहीं, संस्था का व्यवस्थापना करेंगे। पूरा जब वो बढ़ जाता है हमारे आंदोलन, पूरा देशों को उसका भी संचालन करेंगे वो लोग। और जो वैश्य होते हैं ऐसे भक्ति के संबंधित चीज़ों को जो जरूरी है उनको वो उसका प्रोडक्शन करते हैं और उसका यू नो वाणिज्य करते हैं, बिजनेस करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के कुछ लोगों को, सभी ऐसा अननेसेसरी चीज़ों को क्या है, अननेसेसरी जो जरूरी चीज़ नहीं है उनको बनाने में लगा के सबको सबको काम 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 दिन रात मेहनत कराने के लिए लगा के उनको शोषण करते नहीं है, वो वाणिज्य नहीं है। आजकल वाणिज्य मतलब ऐसे ही होता है ना, तो बिजनेस मतलब क्या होता है, ऐसे चीज़ों को बनाना कारखानों में जो जरूरी नहीं है और उसका बिक्री करना, और उसके लिए लोगों को दिन रात मेहनत करने के लिए लगाना, और उसके बीच में वो पेपर पेपर का एक्सचेंज होता है, वो दैट इज द मीन्स ऑफ एक्सचेंज, प्रिंट करके 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 पेपर बना के पेपर प्रिंट करके कर सबको देना, यही धन है करके, उसके द्वारा सब कुछ मतलब एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान होता है, तो इसके द्वारा वो आदान प्रदान करने के लिए वो माध्यम है वो पेपर, जिसको हम लोग रुपी बोलते हैं या डॉलर बोलते हैं। तो इस ये सब चीज़ कैसे हम लोग भगवान के संबंध में करेंगे, हाउ इट हैपन्स एक्चुअली प्रैक्टिकली, जस्ट टॉक नॉनसेंस, हाँ बकवास बोलना सिर्फ, समू आर अदर डू इट फॉर कृष्णा, ये सब बकवास है ये सब चीज़। तो स्वधर्म मतलब जो शास्त्रों में निहित कर्म होते हैं, ठीक है, शास्त्रों में जो निहित नहीं है वो क्या है, वो आसुरी है वो। यह शास्त्र विधि मूर्त वर्तते काम कारता न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न परामपतिम, कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा, सुख को प्राप्त नहीं करेगा, यहाँ पर स्वधर्म को पालन करने से सुख प्राप्त होता है, वहां पर वो लोग शास्त्र विधि को पालन नहीं करने से क्या होता है, तो सुख और न परामपतिम, तो ऊंचा गति भी प्राप्त नहीं। तो ऐसे वो असुरी है, ऐसा असुरी दर्शन बता यू नो आजकल प्रचार हो रहा है असुरी दर्शन का। तो समू आर अदर डू फॉर कृष्णा, वो समू आर अदर कैसे होता है, किसी न किसी तरह कृष्ण को खरो करके। तो ये सब चीज़ अच्छी सही तरह से हमें हमें समझना चाहिए, सही तरह से हम लोगों को समझना चाहिए, ऐसे ऐसे प्रचार होना नहीं चाहिए। पढ़िए आगे।
जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म व आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था में मानवीय सभ्यता का शुभ आरंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है।
तो मनुष्य जीवन सभ्यता शुरू नहीं होता है। आजकल मनुष्य सभ्यता नहीं है, वो पशु की सभ्यता है। जहाँ पर वर्णाश्रम नहीं रहता मनुष्य सभ्यता नहीं शुरू होता है। पशु सभ्यता में ऐसे कुछ नहीं होता, भक्ति वगैरह होता नहीं है, सिर्फ एक दूसरों को कैसे खींचना, एक दूसरों को कैसे काटना, एक दूसरों के ऊपर कैसे शोषण करना, वही चीज होता है। तो वो मनुष्य सभ्यता नहीं है।
विश्व के परम गुरु भगवान कृष्णा अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। जब वो कहता है कि इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आदर में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार के अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है।
तो वो गांधी ने भी ये हिंसा अहिंसा करके, उसके अनुसार भगवद्गीता का क्या है, भगवद्गीता का सार क्या है, अहिंसा। तो लेकिन वो भगवद्गीता से नहीं हुआ, वो वहां से आ गया, वो बुद्ध बौद्ध बुद्धिज्म से आ गया, वो अहिंसा परमो धर्मो करके सभी ही मिक्स्ड एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पर वो मूर्खों का दर्शन है बोल रहे।
व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो हि प्रजा रक्षान् शस्त्रपाणि प्रदण्डयन् निर्दिश्य परसैन्यादि क्षितिं धर्मेण पालयत्। क्षत्रिय धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध में विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रु को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं।
तो अर्जुन सोच रहे थे कि मुझे लाभ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भगवान बता रहे कि उनको लाभ ही होगा। अगला श्लोक, अतच्छे इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खोदोगे। तो इसके पहले भगवान बोल रहे हैं कि आपको सुख प्राप्त हो जाएगा और स्वर्ग भी प्राप्त हो जाएगा, युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा। तो युद्ध नहीं करोगे तो पिछले अध्याय में अर्जुन वो बता रहे थे, युद्ध करने से दोनों ओर से हमें क्या होगा, दोनों ओर से मैं हार जाऊंगा, ऐसे लूज एंड लूज सिचुएशन बोलते हैं ना उसको। तो लेकिन भगवान युद्ध न करने से लूज एंड लूज सिचुएशन बोलते हैं, युद्ध करने से विन एंड विन। तो युद्ध न करने से आप दोनों तरीके से हार जाओगे। इमं धर्म्य अतच्चेत्वम इमं संग्रामं न करिष्यसि, अपने धर्म को बारे में सोचते हुए आप संग्रामं न करिष्यति, इस युद्ध नहीं करेंगे, संग्राम नहीं करेंगे। तथा स्वधर्मं कीर्तिं च, स्वधर्म को न पालन करने का कीर्ति को आप खोदोगे, और दूसरा है हित्वा पापम अवाप्स्यसि, और पाप वो धर्म न पालन करने से क्या होता है, वो उसको ही पाप कहते हैं। धर्म पालन कर नहीं करने से वो पाप है, वो धर्म को पालन नहीं करना। तो अर्जुन तो बहुत ही बड़ा योद्धा थे, उनको वो बहुत प्रसिद्ध थे बड़ा योद्धा के, बड़ा क्षत्रिय के नाम से, तो इसलिए वो सब कीर्ति जो है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे कि शिव जी को भी हरा के उन्होंने क्या किया, पाशुपतास्त्र को प्राप्त किया था, और द्रोणाचार्य के वो प्रमुख शिष्य आप जानते हैं ना, द्रोणाचार्य ने उनको वादा किया था कि आपको पूरा दुनिया में सबसे श्रेष्ठ योद्धा बनाऊंगा मैं, सबसे श्रेष्ठ योद्धा बनाऊंगा। ऐसे जो योद्धा है अर्जुन, उनका जो कीर्ति है वो या अपयश उनको प्राप्त हो जाएगा, उनका कीर्ति नष्ट हो जाएगा, और युद्ध न करने से या उनका जो स्वधर्म को पालन न करने से, स्वधर्म को त्यागने की जो पाप है वो बहुत ही खतरनाक है। तो स्वधर्म को हम लोग पालन नहीं करेंगे तो पाप लग जाएगा। तो आजकल देखिए कोई भी किसी को पता नहीं स्वधर्म क्या है, कैसे होता होगा ना, कितने सारे पाप होते होंगे, है कि नहीं? तो सब कुछ पापमय जीवन है। इसलिए ऐसा सभ्यता जहाँ पर वर्णाश्रम, ऐसे समाज जहाँ पर वर्णाश्रम धर्म नहीं है, तो जो कुछ भी लोग करते हैं वो क्या हो जाता है, पाप हो जाता है, और उनका प्रगति है वो कुंठित हो जाता है। प्रगति वो रुक जाता है वो, तो रुकने के कारण कोई मुक्ति प्राप्त नहीं करते हैं, कोई कृष्ण भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे। भक्त लोग भक्ति में आने के बाद भी वो लोगों को रुचि नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे पापमय समाज में रहने के कारण भक्ति में रुचि नहीं आएगा, वो लोग किसी न किसी तरह माला पुष्प करके कुछ करके छोड़ देते हैं, या ज्यादा से ज्यादा भक्त 16 माला नहीं करते, दीक्षित भक्त भी तो ऐसे होता है, वर्णाश्रम समाज नहीं है तो, स्वधर्म का पालन नहीं होता है तो वो कभी भी संतुष्टि नहीं लाएगा। अभी तो आजकल तो 4 नियम भी नहीं पालन करते सभी इस्कॉन के भक्त, विरला आपको पाए जाएंगे 4 नियम पालन करने वाले। वो ऐसे क्यों होता है, पापमय जीवन क्यों होता है? प्रभुपाद पंचम स्कंद में एक जगह पर कहते हैं कि वो है ना, वो हमने बताया 13वें और 14वें अध्याय आपको पढ़िए करके, उस अध्याय में वो लिखते हैं, सो ऑल काइंड्स ऑफ बाय इंडल्जिंग इन इलिसिट सेक्स, व्यभिचार में या जो धर्म के विरुद्ध जो काम जीवन है उसमें, मैथुन जीवन है उसमें लगने के कारण क्या हो जाता है, मन दूषित हो जाता है। तो मन दूषित होने के कारण प्रभुपाद वो हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों के बारे में कहते हैं, वो लोग इवन सच अ ग्रेट मूवमेंट विच इज मेंट टू डिलीवर द ह्यूमन सोसाइटी विल बी, देयर विल बी क्योटिक कंडीशन, ऐसे ऐसे कुछ कहते हैं वो। तो हरे कृष्ण आंदोलन में भी बहुत सारा समस्याएं आ जाएगी इसके कारण, तो आजकल वही हो रहा है क्योंकि लोग इसको अच्छी तरह से पालन नहीं करते हैं। तो धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि वर्तर्षव, इसका अर्थ होता है जो प्रजा उत्पत्ति करने के लिए हमें सिर्फ काम जीवन में लगना चाहिए, वो भी कृष्ण भावना प्रवृत्त, वो भी प्रभुपाद जी ने बताया वो कुत्ते बिल्ली की तरह प्रजा उत्पत्ति नहीं करना है, कृष्ण भावनामृत में उसको प्रजा उत्पत्ति करना, कुछ संस्कार कुछ नियम को पालन करना होता है। फिर अंतर क्या हुआ, सिर्फ ऐसे ही प्रजा को उत्पत्ति किया, अंतर क्या होगा? प्रभुपाद जी उपदेशामृत के पहले श्लोक में जब उदरोपस्त वेगम, वहां पर उपस्त वेगम मतलब ये जननेन्द्रिय का जो वेग को नियंत्रण करना, वहां पर कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम लोग विवाह के लिए अनुमति देते हैं ताकि कृष्ण भावना भावित ऐसे विवाहित होकर सो स्त्री पुरुष कृष्ण भावना भावित प्रजा को उत्पन्न करना चाहिए, और वो बच्चे जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं उनको तुरंत ही हमारे डलास गुरुकुला में भेज देना चाहिए। इसका अर्थ है हम लोग विवाह करना चाहिए या ऐसे मैथुन जीवन में लगना चाहिए किसके लिए, बच्चों को गुरुकुल में डालने के लिए बस, और किसके लिए नहीं। तभी वो वास्तविक धर्म के अनुसार काम जीवन में, नहीं तो क्या हो जाता है, वो धर्म विरुद्ध हो जाता है, धर्म के विरुद्ध हो जाता है। तो ऐसे धर्म नहीं है, तो इसके लिए बहुत सारा प्रशिक्षण चाहिए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में पहले वो पुरुष का प्रशिक्षण होना चाहिए, स्त्रियों का भी माँ के मार्गदर्शन में, एक साध्वी माँ के मार्गदर्शन में ये सब प्रशिक्षण होना चाहिए, तब जाकर ये सब होते हैं, है ना। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है मनुष्य समाज में वर्णाश्रम धर्म, नहीं तो वो पशु का जीवन। तो सस्वधित्वा पापम अवाप्स्यसि, वुड गो टू हेल नॉट बाय फाइटिंग बट विड्रॉइंग फ्रॉम बैटल। पिछले श्लोक अध्याय में उन्होंने कहा मैं ये ऐसे लोगों को मारने के कारण मैं नरक में जाऊँ, लेकिन यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि युद्ध न करने से आप नरक में जाएंगे। तो अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्छते। पीपल विल ऑल, लोग सदैव तुम्हारे अपयश को वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो यहाँ पर भगवान अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, वो कहते हैं कथयिष्यन्ति, क्या कथा करते हैं लोग क्या करता करते हैं भौतिक जगत में। कृष्ण कथा तो नहीं करेंगे लोग भौतिक जगत में, ग्राम में कथा मतलब क्या है वो बताइए, ग्राम में कथा मतलब ग्राम में कथा मतलब वो दूसरे व्यक्तियों के बारे में चर्चा कर, वो ऐसे है वो ऐसे है ऐसे है। ग्रामों में ऐसे विलेज टॉक बोलते हैं उसको, वहाँ पर ऐसे ही होता है, दूसरे व्यक्ति के बारे में ही चर्चा करते रहते हैं वो। कथयिष्यन्ति क्या कथा करते हैं, कृष्ण कथा तो नहीं करेंगे, है ना। तो लोग आपकी अपयश का कथा करेंगे, तो अर्जुन ऐसे ऐसे है ऐसे है करके। संभावितस्य च कीर्तिर् मरणादतिरिष्यते, ऐसे व्यक्ति जो संभावितस्य रेस्पेक्टेबल मैन, ऐसे सज्जन व्यक्ति को ये जो अपयश जो है मरणादतिरिष्य, मृत्यु से भी ज्यादा है। जैसे वसुदेव ने कंस को वादा किया था कि मैं जब जैसे ही ये देवकी के बच्चे होंगे वो मैं आपको सौंप दूंगा, देवकी को छोड़ दो, आपको देवकी से तो खतरा नहीं है, उनकी बच्चों से खतरा है। तो इसलिए उन्होंने क्या कर किया, उन्होंने तो वो अपना जो वचन है उसको उन्होंने स्वीकार किया, वचन है उसको निभाया उन्होंने। वो जब जैसे ही पहले बच्चे का जन्म हुआ वो तुरंत ही कंस के पास लेकर आए वो। तो इसको देखकर पहले से ही पता था, कंस को भी पता था, कंस तो बहुत ही अधीर व्यक्ति, वो बहुत ही क्या है, क्रूर व्यक्ति है, असुर है, लेकिन फिर भी वसुदेव के ऊपर उसको श्रद्धा थी, क्योंकि वसुदेव जो भी वचन बोलेंगे उसको वो करके ही छोड़ेंगे, वो उसको निभाएंगे, ऐसे उन्होंने उनको पता था। इसके कारण उनको छोड़ दिया उन्होंने देवकी को। तो जब पहला बच्चा हो जाता है तो उस तुरंत ही कंस के पास लेकर आते हैं, तो वहाँ पर भी वर्णन आता है, देख वो कंस भी आश्चर्यचकित हो गया वसुदेव के बर्ताव से, कि कितना उनको अनासक्ति है, अपने वचन के ऊपर कितना और इंद्रियों के ऊपर कितना काबू है, ये सब। तो ऐसे उनकी, इसलिए उनका नाम भी अनकदुंदु भी, अनकदुंदु भी मतलब जो उनका जन्म जब हुआ था वसुदेव, बहुत सारे ऐसे वाद्य बजाए गए थे, क्योंकि वो जो भी वचन देंगे वो करके ही छोड़ेंगे। तो ऐसे तो हाँ, तो उनको क्या रहता है, क्या संभावितस्य, क्योंकि वो बहुत ही रेस्पेक्टेबल पर्सन, वो सज्जन होते हैं, वो दूसरों को जो दूसरे लोग क्या कहेंगे उसके बारे में चिंता रहता है, और प्रचारकों के लिए भी ये जरूरी है, दूसरों के सम्मान, मान सम्मान जो है वो बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम लोग बहुत कड़ाई से ब्रह्मचर्य का, साधु जो शरण लेते हैं तो बहुत जागरूक रहना चाहिए दूसरे लोग क्या कहते हैं, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे शरण लेके कुछ ना कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया, ताकि दूसरे लोग उनको सम्मान दे और वो उनको प्रचार करें। संन्यास उसके लिए है ताकि लोग उनको सम्मान दे दे, और ताकि वो सन्यासी उनको प्रचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सफरण इसलिए दिया जाता है ताकि प्रचार के लिए दिया, हम योग्य नहीं हैं सफरण लेने के लिए। पहले ज़माने में सिर्फ सन्यासियों को सफरण दिया जाता था, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर और प्रभुपाद जी ने ऐसे कुछ व्यवस्था बनाया उन्होंने ताकि प्रचार हो करके। तो इसलिए जागरूक रहना चाहिए। प्रभुपाद जी भी पंचम स्कंद में इवन एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग ऑल प्रेस्टीज सन्यासीज आर फॉलोइंग डाउन, ऐसे बोलो। पंचम स्कंद में इवन एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग ऑल प्रेस्टीज, बहुत सारे सन्यासी उनका पतन हो रहा है ऐसे हमारे आंदोलन में, ऐसे लिखा हूँ पंचम स्कंद में, लिखते हैं वो तात्पर्य में ऐसे। तो ये अच्छा नहीं है। संभावित चाकृत मरणादति रच, अच्छा है कि मृत्यु हो जाए। तो पढ़िए उसको तात्पर्य को। प्रभुपाद जी कृष्ण के वाक्य और विस्तारित करके बता रहे हैं यहाँ पर।
तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए प्रकृति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा, इससे तुम मेरे मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपमान से बच जाओगे। अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, किंतु युद्ध में मरे,
है ना। सेफ्रॉन लेने के बाद अच्छा है कि मर जाए। हाँ वही आपके लिए क्या है सुझाव है। अभी अगले श्लोक में 35वां श्लोक में वो क्या कहेंगे, कथा क्या कथा करेंगे वो लोग, वो वर्णन करेंगे भगवान अभी। भयाद्रणादुपहृतम् मश्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसिला। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो यहां पर कौन कौन थे महारथी? भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, कर्ण तथा जो सभी महारथी है, वो लोग क्या सोचेंगे? भयाद्रणाद उपहृतम्। ऐसा नहीं कहेंगे कि आप बहुत ही उदार भावना से ये युद्ध को त्याग दिया आपने, राज्य को त्याग दिया, नहीं, भय से आपने त्याग भय से भाग गए हैं, ऐसे को कहेंगे। मस्यन्ते त्वं महार येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघव। पहले जिन्होंने बहुत आपका नाम, आपको बहुत सम्मान दिया है बड़ा योद्धा करके, वही लोग आपको अभी क्या करेंगे, तो ऐसे तो कहेंगे। ऐसे पढ़िए उसको तात्पर्य।
भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वो तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वो धूल में मिल जाएगा।
और भी कहेंगे, इतना ही नहीं, वैसे वो भाग गए करके उतना ही नहीं बोलेंगे, वो और भी क्या क्या बोलेंगे भगवान बोलते। अवाश्यवादांश बहुनीति वदिष्यन्ति तव हितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारे वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्यों और क्या हो सकता है। अवाश्यवादांश बहुन, सो अवाश्यवादांश अनकाइंड वर्ड्स, तो अहित बहुन मतलब बहुत सारे शब्दों से, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि वो भय से भाग गया ऐसे बोलेंगे। अवाश्यवादांश मतलब वो देखो अर्जुन स्त्री की तरह भाग गया, वो स्त्री की तरह है ऐसे, ऐसे बहुत सारे शब्दों से। ही इज लाइक अ वुमन, ही इज लाइक अ व्हाट इज दैट, इम्पोर्टेंट, नपुंसक है, ऐसे बहुत सारे शब्द बोलेंगे। बहुन बहुन बताया है ना, खटु वादान बहुन वदिष्यन्ति तवा हितः निंदम तस्तव सामर्थ्यम ततो दुख तरुण, इससे भी बढ़कर आपकी सामर्थ्य को ऐसे निंदा करेंगे वो लोग, बहुत सारे अपशब्द बोलेंगे और बहुत सारे निंदा भी करेंगे आपकी सामर्थ्य को, इससे भी बढ़कर और कौन सा दुख हो सकता है, ऐसे कहते हैं। हाँ प्रभुपाद फिर से आरंभ के श्लोक, जब भगवान ने पहली बार भगवान बात किया भगवद्गीता में, वो अर्जुन को के स्थिति को देखकर बहुत आश्चर्यचकित आश्चर्य व्यक्त किया उन्होंने। कुतस्त्वा कश्मलमिदम् विषमे समुपस्थित मनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम करम अर्जुन, ये आर्यों के लिए तो योग्य नहीं है ऐसे वो कहते हैं। वो आश्चर्यचकित आश्चर्य व्यक्त किया हुआ, तो क्योंकि ऐसे अर्जुन जो बहुत ही योद्धा है वो अभी युद्ध नहीं करना चाहते, अपनी कीर्ति को खोना चाहते हैं, दूसरों के द्वारा निंदित होना चाहते। तो अगला श्लोक लीजिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उद्दिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को वो करोगे। अतः दृढ़ संकल्प के कारण खड़े हो और युद्ध करो। तो युद्धाय कृत निश्चय, तो दृढ़ संकल्प के कारण भगवान उनको प्रेरित कर रहे हैं ऐसे शब्दों से। हाँ, उसको क्या बोलते हैं उसको, ही स्पीकिंग सच इंस्पायर प्रोवोकिंग वर्ड्स। तो ये सभी पहले के जो भी श्लोक क्या है वो प्रोवोकिंग हिंदी में वर्ड से उत्तेजित करने वाले शब्द यहाँ पर वो कह रहे हैं, विशेष करके उनके जो क्षत्रिय भाव है उसको जागृत कर रहे भगवान। ये सब कहकर क्षत्रिय उनके संबंध में कहकर 31वां श्लोक से लेकर यहाँ तक। हतो वा पाप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, उत्तिष्ठ खड़े होकर, गेट अप मतलब उठ जाओ और युद्ध करो करके। वो छांदोग्य उपनिषद में एक श्लोक आता है ना क्या, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरम निबोधत। उत्तिष्ठ मतलब गेट अप, उठ जाओ, जागृत मतलब जाग जाओ। प्राप्य वरम निबोधत, प्राप्य वरम निबोधत मीन्स ऐसा वर को, शाश्वत जीवन का वर को प्राप्त करो। ऐसे विवेकानंद ने इसको कुछ और बताया, गेट अप वेक अप अराइज, डोंट स्टॉप अंटिल यू रीच योर गोल, लाइक दैट। ऐसे क्या गोल है वो उन्होंने वर्णन नहीं किया है। प्राप्य वरम निबोधता मतलब शाश्वत जीवन, जीवन को प्राप्त करो, वहां पर क्लियरली बताया गया। और उसके बाद में वर्णन होता है वहां पर कि ये जो जीवन है आध्यात्मिक जीवन, एक क्या बोलते हैं उसको, इस वॉकिंग ऑन तलवार के जो धार के ऊपर चलने के समान, छतर उसको उपयोग करने के समान, वो खड़ गए खड़ जाएगा ऐसे। तो उत्तिष्ठ ऐसे कह रहे हैं, पढ़िए उसको।
प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण ने कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया पर आश्चर्य हुआ था, और उन्होंने ये दया भाव को अनार्यचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचन को सिद्ध कर दिया। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वो युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जाएगा।
तो अगला श्लोक, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया ततो युद्धाय युज्यस्व कपमुवाक्षसी। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो फिर भी वो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि फिर भी मैं, वो उनका क्या था, ऐशा मर्ते कांक्षितम नो, ये राज्य सुख भोग जो है जिनके कारण हम लोग इसको प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वही नहीं रहेंगे तो कैसे सुख होगा। वैसे तो उसके उत्तर में भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जय अजय, ऐसे आपको युद्ध करना चाहिए। तो फल के हेतु आपको युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, ऐसे कहते हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण बाणामृत में के कार्य में कोई ऐसे पाप का प्रश्न नहीं होता, क्योंकि भगवान मुकुंद के शरण में जाने के कारण वो सब कुछ हमें मुक्ति प्रदान करने वाले। मुकुंद मतलब क्या है? मुक्ति प्रदान करने वाले हैं मुकुंद। मुकुंद शब्द का अर्थ ही होता है मुक्ति प्रदान करने वाले, तो ऐसे पाप का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो वो श्लोक उल्लेख कर रहे हैं भागवत से, देवर्षि भूतात्मा नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम रणीच राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। क्योंकि पिछले जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता साधु सामान्य जन अथवा परिजन मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। तो ये छह प्रकार के, जब हम लोग जन्म लेते हैं तो छह प्रकार के लोगों के प्रति कृतज्ञ हो जाते, ऋणी हो जाते हैं। तो देव देवताओं के द्वारा बहुत सारे सुविधाएं प्राप्त करते हैं हम लोग, ऋषिगण ऋषिगण बहुत सारे हमें ज्ञान प्रदान किया है, ये सब महान ऋषिगण सब लोग तो ज्ञान प्रदान किया हम लोगों को। भूत अन्य जो लोग मानव जाति है सामान्य जन है, नृणाम भूत मतलब अन्य पशु वगैरह जैसे गाय वगैरह होते हैं, नृणाम मतलब सामान्य जन अन्य लोग मनुष्य जो है समाज में रहते हैं तो उनसे कुछ बहुत लेना देना होता है ना। तो और पितृगण मतलब पूर्वज, पूर्वजों का भी हम लोग बहुत सारे जो संपत्ति है वो हमें प्राप्त होता है जन्म लेने से ही, है ना। न किंकरो न रणीच राजन, किंकर तो ऐसे अकेले हमें कोई जो जिम्मेदारी है वो उस नहीं रहती है, तो हमें भगवान के शरण में होकर ये करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद, हालांकि ये क्या है, ये जो श्लोक है फल को आसक्त हुए बिना कर्म करो वो बता रहे, निष्काम कर्म योग है ना, फल को आसक्त हुए बिना कर्म करो ऐसे होता है। लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा भक्ति भक्ति वेदांत तात्पर्य है, तो भक्ति को वो जोर देते हैं। इसको हम लोग अगले श्लोक में और चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक जो अंतिम वाक्य है तात्पर्य का वो महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है, इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। इसका अर्थ है अगले श्लोक से वो बुद्धि योग, ऐसा जो कर्म जो फल के आसक्त हुए बिना करना है तो निष्काम कर्म योग का। लेकिन प्रभुपाद जी हमें क्या बताएंगे कैसे भक्ति में लगना चाहिए, इसको ऊपर ही जोर देंगे, ताकि क्योंकि अंतिम में भगवान सबको छोड़कर उनके शरण में आ जाओ ऐसे बोलते, इसलिए वही उसकी के ऊपर जोर देते प्रभुपाद, ताकि हम लोग उस जो अंतिम इतना ही पढ़कर हम लोग कुछ करके बैठ जाए, अटक के बैठ जाए यहीं पर, अंतिम जो शिक्षा है उसके ऊपर ही प्रभुपाद जोर देंगे हमेशा। वो उनकी कृपा है हमारे ऊपर, नहीं तो हम लोग बहुत सारे लोग भगवद गीता का अध्ययन करेंगे उसका सार नहीं समझ के बीच में कहीं पर अटक जाते हैं, कोई अन्य कर्म योग ज्ञान योग अष्टांग योग वगैरह, ठीक है। तो इसके ऊपर वो ध्यान जोर देंगे, तो इसलिए ये श्लोक भी उन्होंने उल्लेख किया। तो यहाँ पर रुकेंगे, आपका कोई प्रश्न टीका टिप्पणी है तो कर सकते हैं, तो 11 बजे फिर से वापस आएंगे।
युद्ध क्षेत्र में राजा को एक दृष्टि से देखें तो बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर वही मारा जाएगा तो शासन कैसे चलाएगा, उत्तराधिकारी की नहीं, ब्राह्मण जी, लेकिन ब्राह्मण इसको ट्रेन तो करना चाहिए, राजा को तो एक दृष्टि से बचाना चाहिए।
तो मतलब वो सामने नहीं जाना चाहिए उसका, आपका अर्थ है ना? ऐसा तर्क हो सकता है। हाँ, इंटेंशन सही है, लेकिन उसका व्याख्या नहीं रह जाता है, क्षत्रिय का व्याख्या नहीं है। वो प्रजा को रक्षा करना चाहिए, मतलब जो सेना में युद्ध कर रहे हैं उनको भी रक्षा करना चाहिए उसको। जरूरी नहीं कि वो लोगों को हत्या हो जाए, मैं अपना सेफ चेंबर में रहूँगा। उसका जिम्मेदारी उनको भी, सेना को भी रक्षा करना होता है। वो अयोग्य राजा लोग ऐसे सोचते हैं।
आपने बताया कि चेतना जो है जो भी करती कृष्ण के लिए गलत है, कृष्ण एकदम करती जाए तो उसी रचना से बोझ गलत से ये लोग कह सकता है कि इसको तो कृष्ण कह रहे जो भी करती रहे।
या लेकिन उसमें क्या है, जब ऐसे कहते हैं कि तब वो वर्णाश्रम के अंदर ही बोल रहे भगवान, वो वर्णाश्रम व्यवस्था में ही बोल रहे, क्योंकि भगवान कृष्ण उन्होंने बनाया हुआ व्यवस्था के बाहर कुछ नहीं बोलेंगे, है कि नहीं? कुछ नया व्यवस्था वो भी ठीक है करके वो नहीं बोलेंगे, है ना? वो व्यवस्था बनाने वाले हैं भगवान, और दूसरा और ने कोई व्यवस्था उनसे उनकी व्यवस्था से श्रेष्ठ होता है क्या? नहीं होता है। तो वो गलत। इससे भी और अच्छा कोट है प्रभुपाद जी, ये वो तात्पर्य में लिखते हैं 18वें अध्याय के तात्पर्य में, हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो लोग कारखानों में काम कर रहे हैं वो भी सन्यासी की तरह, सन्यासी भी से भी श्रेष्ठ है वो बोलते, तो उसको लोग उल्लेख करेंगे। लेकिन जब वो लोग काम कर रहे थे उस समय पर, तब धन का जरूरत था आंदोलन के लिए आरंभ के समय में, प्रभुपाद जी ने उनको काम करने के लिए बताया, और वो लोग प्रभुपाद जी के साथ रहते थे, जो भी धन आता था ला के प्रभुपाद जी को देते थे वो लोग। ऐसा कर रहे हो क्या आप लोग? या वहां पर क्या है, अपनी जो जो हमारे जो दैव दत्त हमारे जो गुण है उसको हम लोग भगवान की सेवा, वही वर्णाश्रम है, वही वर्णाश्रम है। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, तुम कुछ भी करो, विम्सिकल कम करो, उसको भगवान के लिए करो करके ऐसे सोचो, कल्पना करो मन में, वो होता नहीं है। तो वहां पर तुम ऐसे वहां पर वो लोग ऐसे कोई ऐसे कवि है, वो कोई एक वेश्या के बारे में वो वर्णन करेगा, वो कैसे भगवान के संबंध में होगा वो, है कि नहीं? ये समस्या है। ये लोग आप विम्सिकल वर्क कुछ भी काम कार कार्य करना, उसको आप कल्पना करो कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। वो एक व्यक्ति है, वो हमारे इस्कॉन से जुड़े हुए है, संबंधित है वो। वो कहते हैं प्रभुपाद जी ने मुझे, वो विम्बलडन खेलते थे वो, है ना, क्या बोलते हैं उसको, विम्बल टेनिस, यू प्ले टेनिस फॉर कृष्णा, ऐसे मुझे बताया, इसलिए मैंने ऐसे खेलता गया, ऐसे बोलते वही। लेकिन प्रभुपाद जी अन्य जगह पर ये इसके विरुद्ध भी लिखा है, ये मंडेन स्पोर्ट्स इज नॉनसेंस, इज जस्ट डिस्ट्रैक्शन, ऐसे करके प्रथम स्कंद में वो श्लोक के तात्पर्य में भौतिक ये स्पोर्ट्स होता है ना, स्पर्धा खेल कूद होता है ना, उसके बारे में लिखा है वो, जो कलयुग में क्या 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 बोलते हैं उसको, अनाप शनाप कार्य होते हैं, तो उसमें एक लिस्ट में एक भी ये भी है। तो प्रभुपाद जी के अन्य शिक्षाओं को भी देखना चाहिए, है कि नहीं? लोग कैसे उसको आप प्रभुपाद जी विंबलडन के बारे में बोला उन्होंने, जो इसलिए शुरू किया स्पेशली जो मिक्स डबल्स खेलते हैं ना, वो स्त्रियों के जो यू नो रूप को भोग करने के लिए, उनके फिगर यू नो उसको भोग करने के लिए ये सब शुरू किया वो लोग। वो कैसे भक्ति होता है बताइए, है ना? तो दूसरे जगह जो प्रभुपाद जी ने बताया उसको भी देखना चाहिए, है कि नहीं, समझना चाहिए। आचार्य सारा ग्राही होना चाहिए, बारवाही नहीं, ठीक है? ब्रह्मचारी में आश्रम में रह के आप प्रशिक्षण लेंगे, गुरु आपको बताएंगे आपको यही करना चाहिए करके, वो मार्गदर्शन करेंगे आपको। वो हो सकता है, वो भी उससे भी हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अंत में गुरु निर्णय करता है, ठीक है? अभी संचालन को तो करना चाहिए। और प्रभुपाद जी बोलते हैं इस कृष्ण भावनामृत के आंदोलन के जो बैनर के नीचे सभी लोग, दुनिया के लोग इकट्ठा होकर ये असुरी जो सरकार है उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ना चाहिए, ऐसे बोलते। वो कौन करने वाला, कुछ लोग चाहिए ना उसके लिए, उसके लिए सामना करना चाहिए ना, सामने जाना चाहिए ना, है कि नहीं? अभी आप गुरुकुल शुरू करेंगे, ये लोग बोलेंगे आप लोगों को सरकार बाध्य करेगा, आपको क्या बाध्य करेगा, हमारा जो प्रणाली है शिक्षण प्रणाली उसी को पालन करना पड़ेगा, आप अपना कुछ गुरुकुल नहीं, शिक्षा प्रणाली नहीं बना सकते, ऐसे बोले तो उनके विरुद्ध कौन युद्ध करने वाला, क्षत्रिय चाहिए ना, और करना भी चाहिए हम लोगों को। ये जो गेज वगैरह है ना, ये जो होमोसेक्सुअल्स लेस्बियंस वो अपने अधिकार के लिए युद्ध कर रहे हैं, हम लोग क्यों अपने अधिकार के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोगों को कुछ क्षत्रियों को भी तैयार करना चाहिए, जरूरी नहीं आरंभ में वो शस्त्र लेंगे, लेकिन लीगल फाइट्स उसके लिए करना चाहिए, उनके अंदर वो धैर्य होना चाहिए, शौर्य तेज वो धृति दाक्ष वो गुण होना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो शस्त्र लेंगे, जब जरूरत पड़ता है वो भी करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं वो वैष्णव मतलब वैसे है, ऐसा नहीं कि मैं राधा कुंड में बैठ के ये करूंगा, हम लोगों को ऐसा वैष्णव जो मूर्ख और रास्कल वैष्णव नहीं चाहिए बोलते प्रभुपाद, हमें अर्जुन और हनुमान के जैसे होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचारी वो नहीं करेंगे, जो विशेष करके आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे वो सिर्फ मार्गदर्शन करेंगे, सन्यासी ब्रह्मचारी कुछ गृहस्थ वक्त ऐसे होना चाहिए, वो लड़ना चाहिए लीगल केसेस। उसके लिए उसको वो सब अन्य सेवाएं उसके लिए क्या करना चाहिए, सहायता करने के लिए जो भी जरूरत है वो सब करना चाहिए, वो प्रमुख होना चाहिए, वो प्रमुख होना चाहिए, नहीं तो सर वो इस्कॉन संस्था में इम्बैलेंस हो जाएगा या ये कॉन्ग्रेगेशन में इम्बैलेंस हो जाएगा, वो केंद्र होना चाहिए, उसके लिए जो भी जरूरत है वो कर सकते हैं, थोड़ा व्यवस्था कर सकते हैं उसको, ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसलिए समस्याएं हो रहे, कोई प्रतिभ्रष्ट हो रहे, इसलिए ऐसा ऐसे प्रचार हो रहा है, कुछ भी करो तुम भगवान के लिए करो करके, या वो मैं बोल रहा हूँ, तो क्योंकि वो एक व्यक्ति जो अपना धर्म नहीं पालन करते है वो पूरा समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है, हम लोग अपना स्वधर्म करना चाहिए, उसमें फिक्स रहना चाहिए। तो तब सब कुछ समाज ऊपर उठेगा, चेतना ऊपर उठेगा, नहीं तो उसका प्रभाव दूसरों के ऊपर भी पड़ेगा, है ना। यहाँ पर भी ऐसे होता है ना, हम जैसे लेट उठते हैं सभी लोग लेट उठना शुरू कर देंगे, है ना। उसका प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ, नयन जल्दी उठ जाता है, उसका प्रभाव पड़ जाएगा। जो पॉजिटिव इंस्पिरेशन लेते हैं वो लोग भी उठ जाएंगे, है ना। जितना हो कर सकते हैं उतना अच्छा है, लेकिन सेवा के भावना होना चाहिए। भक्ति में क्या है, सेवा भावना बहुत महत्वपूर्ण है। वो सेवा भावना नहीं है तो क्या हो जाता है, वो ज्ञान मिश्र भक्ति होता है। फिलोसॉफिकल परस्यूट्स विदाउट सर्विस एटीट्यूड इज ज्ञान मिश्र भक्ति। समझ में बहुत सारे, अभी जैसे देखिए हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, गुरुकुल के लिए बहुत सारा उसका करिकुलम होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। ब्रह्मचारी लोग नहीं करेंगे, सन्यासी लोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो समाज वर्णाश्रम आगे नहीं बढ़ेगा, गुरुकुल आगे नहीं बढ़ेगा, ब्रह्मचारी आश्रम आगे नहीं बढ़ेगा, संस्था आगे नहीं बढ़ेगा, चेतना ऊपर नहीं उठेगा। उसके लिए तो बहुत सारा स्वाध्याय करना पड़ता है ना, लेकिन सेवा के भावना से कर रहे हैं हम लोग उसको। तो वो आपका जिम्मेदारी, वो देखना पड़ेगा आपको कि वो से उनके गुणों का प्रभाव कितना हद तक है। तमोगुण जो डिसिप्लिन नहीं है उसका लक्षण, वो तमोगुण का लक्षण है। वो कभी भी कुछ भी करते रहते हैं, वो कुछ नियम नहीं उनका, कुछ डिसिप्लिन नहीं है, तो उनको डिसिप्लिन के लिए थोड़ा प्रशिक्षण होता है उनको, उनके पीछे पड़े रहना पड़ता है उनको आपको। बाद में बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन करने की जरूरत है, ऐसा लग रहा है मतलब वो फिट नहीं है आश्रम में रहने के लिए। वो पूरा घोर तमोगुण का लक्षण है। और नहीं, यहाँ पर अभी सीधा आदेश मिल रहा है, सीधा आदेश अर्जुन को, है ना, उसके अनुसार। तो भगवान के प्रतिनिधि ब्राह्मण हुआ करते थे और राजा भी नरदेव हुआ करते थे। नरदेव मतलब वो भगवान के प्रतिनिधि है, तो तब वो सीधा आदेश होता है, अपने मनगणित ढंग से बताया, ऐसा नहीं कि। इसलिए मैं बताया ना, कुरान का दूसरा भी हमें आदेश को स्वीकार करना चाहिए। कुरान में कहाँ गया है तुम गाय का हत्या करो और खाए खाओ करके, कहाँ पर बताया गया? मांस खाने के लिए कहाँ पर बताया गया है? नियमित रूप से कोई पर बताया जाता है ऐसे, नियमित रूप से। हाँ, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध अंधाधुंध खाते रहो ऐसे, कत्ल करना खोलो और खाते रहो ऐसे, कहाँ पर बताया गया? सब कुछ स्वीकार करना चाहिए, सर्वमेतद् रतं मन्ये। वो कैसे धर्म है जो आपको दूसरों के ऊपर हत्या करके उनको खाओ करके, कौन सा धर्म है वो? धर्म का चार स्तंभ होते हैं ना, दया, सत्यता, शौचता और तपस्या। कौन सा धर्म है जिसके ये चार स्तंभ नहीं है तो क्या धर्म का बात कर रहे हैं आप? दया नहीं है तो कैसे धर्म का आप बात बात कर रहे हैं? है कि नहीं? अंधाधुन सबको काट के खाओ, पशुओं को, मनुष्यों को, कौन सा धर्म का बात कर रहे हो? है ना? और कुछ
श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बिना वर्णाश्रम के मनुष्य इस स्तर पे भी नहीं,
हाँ,
बिना बिना वर्णाश्रम के तो मनुष्य सभ्यता का शुरुआत भी नहीं। वैसे अब तो इस्कॉन में भी तो वर्णाश्रम ठीक से लागू नहीं होता, तो इस्कॉन भी मतलब की क्या स्थिति,
तो इसलिए वो लोग पिजन बन रहे हैं, बहुत सारा मैथुन कर रहे हैं, बहुत सारा मनुष्य नहीं है वो, है ना, कबूतर बन रहे हैं। असुर बन जाएंगे लोग धीरे धीरे, दिखाई पड़ रहे हैं ऐसे प्रवृत्ति का।
जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसके लिए, उनके लिए क्या ब्रह्मचर्य आश्रम है, उनकी क्या स्थिति है?
इसलिए हमने बताया ना आपको, अच्छी तरह से साधना नहीं कर, साधना नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपका प्रवृत्ति जो है वो उभर आएगा, तो प्रवृत्ति उभर आ गया तो फिर आपको गृहस्थ बनना पड़ेगा, वो वर्णाश्रम होगा, उसके वहाँ पर भी आपके गुण के अनुसार होगा, आप फिर भी सतोगुण में हैं तो भी तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, डीटी वर्शिप कर सकते हैं या गुरुकुल में शिक्षक बन सकते हैं, ऐसे ऐसे कुछ कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से चार नियम को पालन करना पड़ेगा शिक्षण शिक्षक बनने के लिए, है ना। कम से कम दो बार सभी प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ना चाहिए सभी, और बहुत सारे ये सब है ना, भक्ति शास्त्री, भक्ति योग, ये सभी कोर्स लेना चाहिए, तभी शिक्षक बन सकते हैं। यद यद आचरती, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं ना, शिक्षक शुड नो द स्क्रिप्चर्स ऑफ मॉरल कोड्स एंड कंडक्ट। तो इस कॉन में क्या है, स्क्रिप्चर्स ऑफ मॉरल कोड्स एंड कंडक्ट, वो शास्त्र क्या है, वो प्रभुपाद जी के ग्रंथ भगवद गीता भागवत। और
जैसे अध्ययन अध्ययन के बारे में, कोई समय मिलता तो पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, सेवा के खिलाफ भी पढ़ता रहता है, कहीं ऐसा चीज है कोई पढ़ते नहीं है, ग्रंथ टच भी नहीं करते, तो ये जो ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे वो उसकी स्थिति क्या होगी, कितने दिन तक वो सेवा नहीं रहता है?
वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो धर्म उसका प्रगति नहीं होगा, गहराई में भक्ति में गहराई में नहीं जाएगा वो। कम से कम उतना पढ़ना चाहिए, एक दो घंटा कम से कम, ज्यादा भी पढ़ सकते हैं लेकिन उसको भी सेवा में लगाना चाहिए, पढ़ाई भी सेवा होना चाहिए। हम ब्रह्मचार्य आश्रम में कभी कभी दुखी रहते थे हम लोग, क्योंकि ऐसे वातावरण नहीं था जिसके कारण हम लोग ज्यादा प्रचार प्रचार करते थे, बीच बीच में दुखी हो जाते थे, डिप्रेस्ड कंडीशन, थोड़ा समय प्रचार करते थे फिर से दुखी हो जाते थे, तब उस समय हम सोचते थे अभी मैं पढ़ते अच्छा है कि पढ़ूँ मैं अभी, क्योंकि उस प्रचार करने के लिए थोड़ा ये नहीं था, सुविधा नहीं था, सहायता नहीं था, कोऑपरेशन नहीं था ऐसे, तो उस समय हम लोग पढ़ते थे, आगे जाके कभी तो ये सेवा में आएगा करके ऐसे पढ़ाई किया। अभी मैं कुछ प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, जो पहले पढ़ा था उसको ही बता रहा हूँ मैं अभी बस, तो अभी वो सेवा में आ रहा है ना, सेवा भावना रहना चाहिए।
आश्रम में कुछ होता है,
आप उनको बताने की जरूरत नहीं, वो धीरे धीरे चले जाएंगे।
जब वो प्रचार में जाएगा तो कैसे सीखेगा लोग, तो पढ़ना चाहिए।
वो प्रचार के लिए भी प्रेरणा नहीं मिलेगा, पढ़ाई नहीं करेंगे, अच्छे तरह से श्रवण नहीं करेंगे। वास्तव में श्रवण से आता है ज्ञान, तो श्रवण करते हैं, लेकिन कलयुग में क्योंकि स्मृति कम रहता है इसलिए ग्रंथ है। जो श्रवण करते हैं उसको याद रखने के लिए फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। और स्वतंत्र रूप से भी हमें कृष्ण को जानने के लिए कोशिश करना चाहिए, अपने जो भगवान ने जो बुद्धि दिया है ना उसको समझ, उसको उनके उपयोग में डालना चाहिए ना, है कि नहीं। इसलिए वेद शास्त्र लिखे गए, 15वें अध्याय में वो प्रभुपाद जी बोलते वाई वेदाज वे रिटर्न डाउन, क्यों शास्त्र दिए भगवान ने, ताकि स्वतः जीव को यह जरूरी है कि स्वतंत्र रूप से वो कृष्ण को समझे, ठीक है। और हाँ, भक्ति क्या होता है, ज्ञान को प्रदान करता है और स्वतंत्र है वो, लेकिन आरंभ में भक्ति में स्थित होने के लिए ये जो भक्ति का ज्ञान है वो होना चाहिए हमें, ये भक्ति का ज्ञान हमें समझ में आ रहा है। हम लोग ज्ञान मतलब वो उसके बारे में बता रहे हैं जो निराकार ब्रह्म में लीन होने का ज्ञान अनुशीलन करते हैं वो लोग, तो ये जो भक्ति का ज्ञान होना चाहिए ना, लेकिन कैसे भक्ति करना चाहिए वगैरह, ठीक है। और माधवेंद्र प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना की आपने? ये कोर्स किसके लिए है? ये हैबिट के लिए, पढ़ाई करने का हैबिट के लिए, रुचि आना चाहिए पढ़ाई में, अध्ययन करना, उसके लिए है। उसके साथ साथ बहुत सारे हम लोग जानकारी भी प्राप्त होता है, अच्छी तरह से समझ लेते हैं हम लोग चीज़ों को।
बता रहे थे कि अगर आपका कोई स्पेशलाइज सेवा नहीं है तो आपको डेढ़ घंटे से ज़्यादा पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, तो सही बोलना है कि सर बोले उसको रुचि है, हो सकता है कि वो कॉलेज रुचि में नहीं कर रहा,
जिसको रुचि है वो सोना पीना वगैरह कम कर देगा वो पढ़ने के लिए। तो इंडिविजुअल नीड्स और इंस्टीट्यूशनल नीड्स दोनों होते हैं ना, संस्था के भी जरूरतें होते हैं, संस्था को भी चलाना होता है, मंदिर को भी चलाना होता है, और हमारे भी जरूरतें होते हैं, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी सेक्रीफाइस अच्छा है, वो नम्रता को लेकर आती है वो, ठीक है। नम्रता में भी प्रशिक्षण चाहिए ना, है कि नहीं। और गुणों के प्रभाव में से ही नित्य, अब वो बता अभी पूछ रहे थे हमारे गुरुदास प्रभु कि कोई कोई लोग क्या करते हैं, लेजी बन जाते हैं यार, है ना, तो वो जो वो खतरनाक हो सकता है, वो थमोगुण में लेके जाएगा आपको। तो थमोगुण से कैसे मुक्त हो सकते हैं हम लोग, किसी भी गुरु या कोई वरिष्ठ भक्त के मार्गदर्शन में जब सेवा करेंगे तभी थमोगुण से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन पढ़ना भी चाहिए, जिस हद तक संतुष्ट होते हैं उस हद तक हमें पढ़ना चाहिए। मोर स्टडी एंड एजुकेशनल एनवायरनमेंट शुड बी देयर इन द आश्रम। और हरे कृष्ण। और तो हमें अभी चार्ट बनाना चाहिए का। सो बोथ ऑफ यू शुड, समवन कैन, यू शुड ट्रांसलेट एंड समवन शुड राइट।